हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर विद अस, हिज ग्रेस प्रीति वर्धन प्रभु। प्रीति वर्धन प्रभु इज डीन ऑफ भक्तिवेदांत अकादमी ऑफ गुरुकुल मायापुर एंड ही हैज बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 20 इयर्स। हिज डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति विद्याकुंड स्वामी महाराज। It's our great fortune that Prabhuji has come here. Every year he takes the Gurukul students along with him for pilgrimage tour, and this year he came to Vrindavan. So he was kind enough to come here and give us his association. So Prabhuji has been teaching for the last 20 years and he's on the sannyas candidate list also. Very soon we will be going to see him in a different dress with a different name. And he has authored a book also. This book is called Defeating Vatsa Sur. It's a very nice book, sweet and cute. This is the book. And this book is saying that a guide to protecting childhood innocence. So who else can write this book than Mr. Preeti Vardhan Prabhu? So we are very fortunate to have him today. So I request all of you to kindly switch off your mobile phones. Main sabse nivedan karunga ki apne mobile phones ko switch off kar de. Preeti Vardhan Prabhu pichle 20 saal se Mayapur mein Bhakti Vedant Academy Gurukul mein padha rahe hain. Wahan ke wo dean hain और परम पूजनीय भक्ति विद्यापुंड स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। हर साल ये गुरुकुल के बच्चों को लेके तीर्थ यात्रा के भ्रमण में निकलते हैं। इस बार वृंदावन में आए थे तो यहाँ पे वो रुके, हमें अपना संग दे रहे हैं। तो सभी से निवेदन अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दें और बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रभु जी के मुखारविंद से प्रवचन सुने। प्रभु जी इज वेरी वेल नोन फॉर हिज थॉटफुल डिस्कोर्सेज, ही हैज अ वेरी थोरो नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, सो यू कैन हैव लॉट ऑफ नेक्टर फ्रॉम हिम। Thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. So now we have the festival, the Holy Name Week.
अभी हमारा उत्सव चल रहा है हरिनाम सप्ताह।
So that's the time when we should remember the holy name, right?
अब वे समय है कि जब हम हरि नाम के बारे में स्मरण करें।
And other time we don't have to.
और अन्य समय हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
So it's not like that. It's not that just because there is some holy name week, so that this week we will chant and other time we don't.
तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है तो अभी हम चैंट करेंगे, जप करेंगे, अन्य समय नहीं करेंगे।
और when there is kirtan like we comes and chants but once it's finished okay go home and then just do what you were used to do।
या जब कीर्तन मेला होता है तभी सब भक्त आते हैं, कीर्तन में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं।
These festivals are not meant to supplement your duty in devotional service।
ये जो उत्सव है आपके जो नियमित भक्तिमय कार्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है।
They are meant to encourage you to increase the enthusiasm in your devotional service।
इनका जो उद्देश्य है आपका भक्ति में जो उत्साह है उसमें वर्धन करने हेतु है।
Throughout the year,
पूरे वर्ष भर के लिए,
Throughout your life,
पूरे जीवन के लिए।
So now, the holy name, right? So, what actually it is? What does it mean chanting the holy name?
तो जब भगवान का पवित्र नाम है वो क्या है या उसका क्या उद्देश्य है?
When we are taking initiation, then we promise to our guru certain things।
जब हम दीक्षा लेते हैं हम अपने गुरु के समक्ष उनको वादा करते हैं कई चीजों के लिए।
We promise to follow the four ecclesiastic principles।
हम ये वादा करते हैं कि हम चार नियमों का पालन करेंगे।
So that's not to forget that what we are supposed to do।
तो वह उसके लिए है कि हम भूले ना कि हमें क्या करने की आवश्यकता है।
एंड देन वी प्रॉमिस that we will be chanting Hare Krishna Maha Mantra minimum 16 rounds every day.
और तो हम ये वादा भी करते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन करेंगे.
Now, we promise minimum 16 rounds a day, not say 100 rounds a week or something like that.
तो हम जो वादा करते हैं वो 16 माला प्रतिदिन का करते हैं. हम सप्ताह में 100 माला करेंगे ऐसे नहीं करते.
That means that we need to accomplish minimum 16 rounds daily.
इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 16 माला प्रतिदिन जप करनी चाहिए.
Not that we can few days skip and then okay, oh today I have to chant 150 rounds.
तो ऐसा नहीं कि कई दिनों से हमने जप नहीं किया वो बैकलॉग में है और फिर हम एक दिन सोचे कि आज मुझे 150 माला करनी है.
So that doesn't work.
तो ऐसे ये कार्य नहीं करता.
That's not the promise.
तो ये जप ये माला नहीं है.
So, and Srila Prabhupada, he was very much stressing on the following the regulative principles.
Srila Prabhupada is baat par bahut bal dete the, jo niyam, jo hamare char niyam hai, regulative principles hai.
In fact, there is a lecture by Srila Prabhupada, initiation lecture.
Yahan tak ki Srila Prabhupada ka ek pravachan hai, jab diva diksha samaroh ka.
In which he mentions, if you are serious and you want to come and take initiation, you are welcome.
अगर आप गंभीर हैं और आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है.
But you have to follow the four regulative principles.
परंतु आपको ये जो चार regulative principles हैं, चार नियम हैं, इनका पालन करना होगा.
If you don't follow the regulative principles, I cannot give you protection.
अगर आप ये चार नियम पालन नहीं कर सकते तो मैं आपको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता.
And Srila Prabhupada mentions twice the same thing in that lecture.
और Srila Prabhupada यही चीज लेक्चर में कहते हैं दो बार.
So it's extremely important that we follow the regulative principles.
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन चार नियमों का पालन करें.
But why?
परंतु क्यों?
Right. Chanting of the holy name, right, is the main thing.
अगर हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है, यही सार है, तो ये चार नियम है, इसको पालन करने की क्या आवश्यकता है?
Chanting of the holy name, this is the instruction. This is what takes us back to Godhead.
भगवान के पवित्र नामों का जप, ये निर्देश है. ये हमें भगवत धाम लेके जाता है.
Following the four regulative principles, this is just a restriction.
और चार नियम ये तो एक बंदिश है.
So if I chant Hare Krishna, then I don't have to follow anything else.
अगर मैं जप कर रहा हूं तो मेरे को अन्य कोई भी चीज पालन करने की क्या आवश्यकता है?
Because I chant Hare Krishna, so I don't have to do anything else.
तो अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं मुझे अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है पालन करने के लिए.
So, now, is that true?
क्या ये सत्य है? क्या ये ठीक है?
Okay, chanting of the holy name.
भगवान के पवित्र नाम का जप.
शास्त्र describes there are three ways how you can chant the holy name.
शास्त्र बताते हैं तीन तरीके हैं भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए.
नाम अपराध,
नाम अपराध,
नाम अभास,
नाम अभास,
शुद्ध नाम,
अशुद्ध नाम.
सो नाम अपराध, somebody can be chanting the holy name, right? Mayavadis can chant the holy name. And when they chant the holy name, who benefits?
नाम अपराध, कई प्रकार के व्यक्ति पवित्र नाम का जप कर सकते हैं. उदाहरण के लिए मायापुर मायावादी भी जप करते हैं. तो ऐसे जप से कौन लाभान्वित होता है?
The acharyas, they warn us, don't hear the holy name from mayavadi.
जो आचार्य हैं वो चेतावनी देते हैं कि मायावादियों से भगवान के नामों को मत सुनिए.
It's not that it does nothing.
ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होता.
It brings you down.
वो आपको नीचे लाता है.
But why? I mean, it's the same holy name. It sounds the same.
परंतु ऐसा क्यों? ये वही नाम है, उसी प्रकार की ध्वनि है.
Right? Namabhas. If one chants Namabhas, then Shastra describes that person can easily get liberation.
अगर कोई नामाभास जप करता है तो शास्त्र बताते हैं तो उसे मोक्ष तो बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है.
But such person who chants Namabhas cannot get pure devotional service.
परंतु ऐसा व्यक्ति जो नामाभास जप करता है उसको शुद्ध भक्ति नहीं मिलती.
But it's the same holy name.
वही हरि नाम है.
But if somebody chants the pure holy name, then he is eligible to get pure devotional service.
परंतु अगर कोई शुद्ध नाम का जप करता है तब वह योग्य बनता है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए.
So now my question to all of you is, what is the difference between when chanting Namabhas, Namaparat and Shudhanam?
तो जो मेरा प्रश्न है आप सबके लिए, क्या अंतर है नामाप्रात, नामाभास और शुद्ध नाम में जप करने के लिए?
Mayavadi can sing such a wonderful kirtan.
कि मायावादी जो मायावादी है वो इतना सुंदर कीर्तन करते हैं.
But it's going to be bad for you to listen to it.
परंतु अगर आप ऐसे कीर्तन को सुनेंगे तो वो बुरा है.
A pure devotee may be chanting not so melodiously the Hare Krishna Maha Mantra, but it purifies you.
और एक शुद्ध भक्त हो सकता है कि वह बहुत संगीतमय तरीके से कीर्तन ना कर रहा हो, परंतु ऐसी ध्वनि आपको शुद्ध करती है.
So it's not the melody which makes the difference.
तो मेलोडी किस राग में किस सुर में गाया जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता.
So what does it depend on?
तो ये किस चीज पर निर्भर है?
It's a question.
ये प्रश्न है. She's saying the mood of the chanter.
Okay. Now, well, if you have the the mood, but the mood also can be, the sahajiyas can make it look really like weeping and chanting, but still it will be detrimental for us. So, internal mood, yes, you are right.
एक प्रकार से आप ठीक हैं, परंतु हम कभी कभार अक्सर ये भी देखते हैं जैसे माता जी ने उत्तर दिया को किस भाव से कीर्तन कर रहा है, तो कभी कभार हम ये भी देखते हैं जो सहजिया लोग होते हैं बहुत ही ऐसा लगेगा कि भाववेश होकर उनके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और कीर्तन कर रहे होते हैं. कॉन्शियसनेस. तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है.
सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द चैंटर.
तो जो कीर्तन कर रहा है उसकी चेतना क्या है उस पर ये निर्भर करता है.
सो पर्सन हु इज कमिटिंग ऑफेंसेस.
तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध कर रहा है,
He is purposefully hurting the Lord. He is purposefully hurting the holy name.
तो वे जानबूझकर भगवान को पीड़ा पहुंचा रहा है, भगवान के दिव्य नाम को पीड़ा पहुंचा रहा है.
Such person, he chants Namaparat.
तो ऐसा व्यक्ति नाम अपराध जप करता है.
Such person, we should not listen to. You should not listen to such chanting.
तो ऐसे व्यक्ति के जप को हमें नहीं सुनना चाहिए.
And no matter how wonderful it may sound.
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अद्भुत उसने में लगता है.
Because the consciousness of the chanter is in his chanting, and it those who listen, it will change their consciousness.
क्योंकि जो कीर्तन कर रहा है, उसकी चेतना अगर कीर्तन में है, तो जो सुन रहा है, उसकी उनकी चेतना पर प्रभाव पड़ता है, वो उनको बदल देता है.
So therefore, you are making yourself vulnerable to actually get the same consciousness as the person who is chanting.
तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं अपनी चेतना को वही चेतना प्राप्त करने के लिए जो जिस चेतना में वो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है.
इट्स सेम लाइक विद से कुकिंग.
ये उसी प्रकार से है जैसे हम खाना पकाते हैं.
तामसिक पर्सन व्हेन ही कुक्स यू ईट दैट यू बिकम तामसिक टू.
अगर कोई तामसिक व्यक्ति खाना बनाता है ऐसे खाने को अगर आप खाते हैं तो आप में भी तमोगुण बढ़ता है.
एंड दैट द मॉडर्न साइंटिस्ट आर सो फूलिश दैट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड दे कैन नॉट प्रूव इट बाय देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस.
और आज का जो विज्ञान है वो तो इतना मूर्खता पूर्वक है. उन्हें चेतना के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट से चेतना को माप नहीं सकते.
वी नो इट वर्क्स.
परंतु हम जानते हैं कि चेतना क्या होती है.
Why? Because it is given to us by Guru, Sadhu and Shastra.
क्यों? क्योंकि हमें गुरु साधु और शास्त्र से उनके ज्ञान प्राप्त होता है.
So, if somebody commits offenses against the Lord purposefully,
अगर
then he chants Namapara.
अगर कोई जानबूझकर भगवान के प्रति अपराध करता है, भगवान को पीड़ा पहुंचाता है तो वो नाम अपराध जप करता है.
Now if somebody does not commit any aparadh, one actually chants for the pleasure of the Lord, then yes, that's a pure devotional service and he is chanting Shuddhanam.
और अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता और भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करता है तो हाँ वो शुद्ध भक्ति है.
So what about person then who chants Namabhas?
तो नामाभास कौन जप करता है?
What is नामाभास?
नामाभास क्या है?
नामाभास.
नाम आभास.
Like the, you can say shadow of the holy name.
पवित्र नाम की परछाई आभास.
Perchaya. Or reflection. Not the reflection. As a shadow, yeah.
पवित्र नाम की छाया.
सो what does that mean?
तो इसका क्या अर्थ हुआ?
It does have the potency of the holy name, but in small quantity.
तो उन नामाभास अर्थ उसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास पवित्र नाम की शक्ति है परंतु कम मात्रा में.
And that's because the consciousness of the person, it's not pure.
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति की चेतना अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है.
But that person, he doesn't chant Namaparad. That means his chanting is not offensive, but it's not now pure.
परंतु वो व्यक्ति नामापराध जप नहीं कर रहा, वो कोई अपराध नहीं कर रहा, परंतु फिर भी उसका पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं है.
So the person who chants Namabhas, then he sometimes does commit an offense.
तो ऐसा व्यक्ति जो नामाभास जप कर रहा है कभी कभार वो अपराध करता है.
But the difference between Namabhas and Namaparad is that the Namabhas devotee, he does not commit the offense intentionally.
परंतु अंतर ये है नामाभास में और नामापराध में कि जो नामाभास व्यक्ति है वो अपराध जानबूझकर नहीं करता.
So sometimes he does something wrong.
तो कभी कभार वो कुछ गलत भी करता है.
He offends maybe a devotee.
हो सकता है वो किसी भक्त के प्रति भी अपराध करता हो.
Or some seva aparadh, something now in the temple, he does something wrong.
या वो सेवा अपराध करता है सेवा के समय मंदिर में.
He may get too emotional and commit some other mistakes.
या वो ज्यादा भाविभोर होकर कोई अलग गलती कर सकता है.
But it's unintentional.
परंतु ये unintentional है. इस जानबूझकर नहीं किया गया.
And when he figures out this mistake, he is looking for how to counteract it, how to fix it.
और उसको जब अपनी गलती का पता लगता है तो वो उसको ठीक करता है.
And that way he gets purified.
और इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है.
So eventually a person who chants Namabhas will come to the platform of chanting Shuddhanam.
तो ऐसा व्यक्ति जो नामाभास स्तर पर है तो वो धीरे धीरे शुद्ध नाम के स्तर पर भी आएगा.
So these are the three the differences how the holy name can be chanted.
तो ये वो तीन प्रकार हैं जिस प्रकार से भगवान के पवित्र नाम जप किए जा सकते हैं. एक गाड़ी है लैंसर 1516 जिनकी भी खड़ी है हटा ले, दूसरे भाग को तकलीफ दे रही है.
एंड सो नाउ वी नो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू.
तो हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
Now the Shastra describes the glories of the holy name, the glories of chanting Namabhas very much.
तो शास्त्र में भगवान के पवित्र नाम जप करने की महिमा का वर्णन है. नामाभास जप करने का बहुत वर्णन है महिमा का.
But maybe we can focus more on then what should we do than to elevate our consciousness to not to chant wrong, not to commit offenses.
We should focus more on not to commit offenses.
Yeah, we can focus more on our consciousness.
तो हालांकि शास्त्र में इसकी महिमा का वर्णन है, पर तो हमारे लिए हम इस बात पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि हमें अपनी खुद की चेतना पर कैसे कार्य करना है, अपराधों से बचना है.
So, because we don't have that much time, so then there is one very very nice book about the holy name.
अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, परंतु भगवान के पवित्र नामों के ऊपर एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है.
And it's श्री हरिनाम चिंतामणि.
इस पुस्तक का नाम है श्री हरिनाम चिंतामणि.
Written by Bhaktivinoda Thakur.
शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई है.
एंड इट इज एक्चुअली कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर.
जो वास्तव में नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की शिक्षाओं का संकलन है.
एंड इट इज रिटन एज ए डायलॉग बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड हरिदास ठाकुर.
और उसको एक वार्तालाप रूप में लिखा गया है नामाचार्य हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में.
So as I said, we don't have much time not to read the whole book, but at least we can focus on some passages.
तो अगर हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरी पुस्तक पढ़ सकें, तो परंतु फिर भी हम कुछ चुने हुए छंद है उस जस्ट में पार्ट्स हैं उस पर उसको हम पढ़ सकते हैं.
Now one may think, okay, about the holy name. So it must be that it is just about the glories of the holy name.
तो कोई सोच सकता है क्योंकि पवित्र नाम के ऊपर पुस्तक है तो इसमें सारी की सारी जो लिखा होगा वो पवित्र नाम की महिमा का वर्णन होगा.
No.
नहीं.
90% of the book is about how to avoid the chanting the offenses against the holy name.
जो 90% पुस्तक है वो इस पर है कि पवित्र नाम के जप में होने वाले जो अपराध हैं, उनसे कैसे बचा जाए.
Why is that?
ऐसा क्यों है?
Because if you don't avoid committing offenses against the holy name, you cannot chant pure holy name.
क्योंकि अगर आप भगवान के पवित्र नाम के प्रति 10 अपराधों को करने से अपने आप को बचाते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, तो आप शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे.
You can think of it like if you are trying to make fire. Now you have a wood, you have the matches, you have maybe even a paper, and you are trying to make a fire, but you keep pouring water.
उसी प्रकार से है कि अगर आप अग्नि जलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास लकड़ी है, माचिस है, कागज है, परंतु आप बार बार पानी डाले जा रहे हैं.
How can you make fire?
तो ऐसे आप अग्नि को कैसे प्रकट कर सकते हैं?
First, you have to stop pouring the water.
सबसे पहले आपको पानी डालने को रोकना होगा.
Let the wood dry, then you can start making fire.
जब लकड़ी सूखेगी तब आप उस अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं.
Or since everybody is here from the big city, right? So, okay, another example.
परंतु क्योंकि आप सब एक बड़े शहर से हैं, तो एक अन्य उदाहरण.
You have a car, right? And then you park the car, and then you put the handbrake.
अगर आपके पास कार है, आपने उसको पार्क में पार्क किया हुआ है और हैंडब्रेक लगाई हुई है.
And then start, no, try starting the car and now start going. Put the no first gear and start going. What happens?
तो अगर आप कार स्टार्ट करें और चलाने का प्रयास करें, हैंडब्रेक लगी हुई है, तो क्या होता है?
Will you go anywhere? No. Well, unless you have some bad handbrake.
आप कहीं जा पाएंगे? नहीं. अगर आपकी हैंड ब्रेक खराब है तो आप शायद चले जाएं, या बहुत बुरी हैंड ब्रेक है.
You have to release the hand brake first before you start now moving the car.
आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक को हटाना होगा कार को आगे बढ़ाने के लिए.
So you have to first release yourself from committing now aparat to come to the stage, now start moving towards the stage of Shudhana.
तो उसी प्रकार से सबसे पहले आपको जो अपराध है उनको करने से अपने आप को बचाना होगा, तब आप शुद्ध नाम की जो स्टेज है उसके प्रति उसके तरफ प्रगति करेंगे.
So now, as we said, 90% of the book is about how to avoid now aparat, and it also gives a solution if you actually commit now aparat, what you should do, how to counteract it.
तो जैसा कि हमने बताया कि 90% पुस्तक कैसे अपराधों से बचा जाए इसके ऊपर है, और अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उसके बाद आपको किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए उसके ऊपर है.
So then we don't have the time to focus on everything, but we will read one chapter about one now aparad.
तो हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरी पुस्तक को पढ़ें, परंतु हम अभी एक अध्याय पढ़ेंगे एक अपराध के बारे में.
Okay, now which one can we choose?
तो हम वो कौन सा अपराध चुन सकते हैं?
Which one is the most common?
कौन सा अपराध सबसे ज्यादा कॉमन है? फर्स्ट, टेंथ, इलेवेंथ.
Which one is the most severe?
Seventh.
Okay, so let's make little. Okay. So, one. Raise your hands who think this is the most severe.
तो आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको लगता है जो पहला नाम अपराध है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और गंभीर है.
ओके, टू.
दूसरा नाम अपराध कितने बात लोग कहते हैं?
हु इज फॉर द थर्ड वन?
तीसरा नाम अपराध.
ओके, फोर्थ.
चौथा. फिफ्थ. पांचवा.
सिक्स.
छठा नाम अपराध.
सेवेंथ.
सातवा नाम अपराध.
एथ.
आठवा नाम अपराध.
नाइन्थ.
नौवा.
टेंथ.
और दसवा.
इलेवेंथ.
और ग्यारहवा.
इलेवेंथ आउट ऑफ टेन. ऑलराइट. वेल, एक्चुअली Krishna takes the aparat, not which is directly against him. So then committing aparat on the strength of the holy name, it's severe, but it's not the most severe.
क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं, अगर कोई उनके प्रति अपराध करे तो वो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते. तो जो सातवां नाम अपराध है, हालांकि अपने आप में बहुत खतरनाक है, परंतु उससे भी अधिक एक अपराध है जो और खतरनाक है.
Krishna takes most severely the offenses against his devotees.
परंतु अगर कृष्ण के भक्तों के प्रति कोई अपराध करें तो उसको भगवान कृष्ण बहुत ही गंभीरता से लेते हैं.
So Vaishnava अपराध is the most severe.
तो जो वैष्णव अपराध है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है.
Now Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he describes that Srila Prabhupada, right, he says, if you perform devotional service, then it's permanent. It will stay with you.
Srila Prabhupada कहते हैं अगर आप भक्ति करते हैं तो ये permanent है, ये हमेशा आपके साथ रहती है.
All the pious activities, material pious activities, they will be here for some time, maybe for the whole lifetime, but they will go away. You will get some reward for it and then it will be away.
बाकी अन्य प्रकार के जितने पुण्य कार्य हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, हाल हो सकता है इस जीवन भर के लिए, परंतु उसके बाद उनका क्षय हो जाता है.
But then Srila Prabhupada guarantees, if you do devotional service, that's permanent.
तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो शाश्वत है, परमानेंट है.
But then Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he describes this instant when a devotee can lose even the devotional credits.
परंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ऐसा उदाहरण देते हैं, ऐसे केस बताते हैं कि जिसके अंदर एक भक्त उसके पास जितने डिवोशनल क्रेडिट्स हैं, जितने उसकी भक्ति का जो क्रेडिट है उसको भी वो खो सकता है, गवा सकता है.
एंड वेल एज फार एज आई नो दिस इज द ओनली नाउ इंस्टेंट व्हेन इट कैन हैपन. अच्छा, इट्स द ऑफेंस अगेंस्ट वंस गुरु. गुरु अपराध.
तो जहां तक मैं जानता हूं कि ये एकमात्र ऐसा इंस्टेंस है, एकमात्र ऐसी सिचुएशन है जब आप आपका जो शाश्वत जो भक्ति में क्रेडिट्स हैं उसको भी आप गवा सकते हैं, और वो है जब आप अपने गुरु के प्रति अपराध करें.
एंड इट इज नॉट द स्पेशल सर्कमस्टेंस व्हेन देयर इज वन मेटेरियल क्वालिटी और वन क्वालिटी, मेटेरियल और स्पिरिचुअल, इट डजंट मैटर. It's despised by all.
तो एक भौतिक गुण ऐसा है, अवगुण ऐसा है, जिसे जिसकी सभी प्रकार के लोग भर्त्सना करते हैं.
It is even said when the person with the quality, now he dies, so and then even the yakshas will not eat him. They will not touch. Nobody will touch his body.
और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये अवगुण है, जब वो मर जाएगा तो यक्ष भी उसके शरीर को नहीं छुएंगे, कोई भी उसके शरीर को नहीं छुएगा.
इट इज सेड दैट अ पर्सन विद दैट क्वालिटी द अर्थ विल नॉट होल्ड हिम.
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये अवगुण है, ये एक विशेष अवगुण है, तो जो पृथ्वी है उसको उसका भार नहीं उठाएगी.
There is atonement for everything. Even Brahmahatya is the atonement.
हर प्रकार के पाप का प्रायश्चित है, यहां तक कि ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित है.
There is no atonement for that quality.
परंतु एक ऐसे उस अवगुण का प्रायश्चित नहीं है.
Once committed, and it's irreversible.
अगर किसी ने उसको कर दिया तो वो कर दिया, और उसको हम ठीक नहीं कर सकते पीछे जाके.
Anybody knows what I'm talking about?
क्या आप में से जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूं?
विच ऑफेंस,
कौन सा अपराध?
क्वालिटी. नो नो नो, नॉट ऑफेंस, इट्स ए गुरु अपराध, बट नो स्पेसिफिक वे. देर इज वन क्वालिटी, राइट? ओके, समबडी कैन बी प्राउड, समबडी कैन बी एनवियस, समबडी कैन बी दिस, इट्स ए क्वालिटी. So which quality now that is that there is no atonement for?
तो वो कौन सा अवगुण है? ये गुरु अपराध है, ये तो सबको पता है, परंतु उसमें भी एक विशेष प्रकार का अवगुण. उदाहरण के लिए कोई घमंडी हो सकता है, कोई देशी हो सकता है, परंतु वो कौन सा अवगुण है जिसके बारे में प्रभु जी बात कर रहे हैं?
If you do that to your own guru, then your pious, not pious, your devotional credits will be destroyed. What can it be?
वो अवगुण अगर वो आप अपने गुरु के प्रति करते हैं तो आपके पुण्य पुण्य नहीं जितने भक्ति में आपके जो शाश्वत क्रेडिट्स हैं उसको भी आप गवा देंगे. तो वो कौन सा अवगुण है?
Ungratefulness, yes. Ungratefulness is a quality which has no atonement. There's no atonement for it. Being ungrateful to one's guru will destroy your devotional credits. It's the most severe offense.
अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं रहना, अकृतज्ञता अपने गुरु के प्रति, ये वो अवगुण है जो आपके सभी प्रकार के भक्ति में क्रेडिट्स को भी खत्म कर सकता है.
सो देन एंड देन नेक्स्ट डाउन इज बीइंग ऑफेंसिव टू वैष्णवस, कमिटिंग वैष्णव अपराध.
और उसका अगला आता है वैष्णवों के प्रति अपराध करना, वैष्णव अपराध.
सो वी विल रीड समथिंग फ्रॉम द बुक.
तो हम उस पुस्तक से कुछ पढ़ेंगे.
So as we said, it's the dialogue between Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur.
So Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur ke beech mein wo vartalap hai.
So I will read then from the chapter, the offenses of the holy name and blasphemy of the saintly, great saintly persons.
To main usse adhyay se padhunga ki sadhuon ke prati साधु निंदा, वैष्णव के प्रति अपराध.
ग्लोरी टू लॉर्ड चैतन्य द लाइफ ऑफ गदाधर, ग्लोरी टू लॉर्ड नित्यानंद द लाइफ ऑफ जाह्नवादेवी, ग्लोरी टू अद्वैता द हस्बैंड ऑफ सीता, ग्लोरी टू श्रीवास एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड.
श्री गदाधर के प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्रीमती जाह्नवा देवी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो. सीतापति श्री अद्वैत आचार्य की जय हो. और श्रीवास सारी भक्त समूह की जय हो.
Then Lord Chaitanya said, Haridas, please describe in detail the offenses to the holy name.
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, अब तुम नाम अपराधों की सुविस्तृत रूप से व्याख्या करो.
Haridas said, Lord, whatever you make me say, I will say by your power.
श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रभाव से जो भी आप मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगा.
There are 10 kinds of offenses to the holy name. This the scriptures say. I greatly fear these offenses.
शास्त्रों में 10 प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है. मुझे इन सभी अपराधों से अत्यधिक भय लगता है.
Please give me the power and I will describe these offenses one by one.
मैं एक एक करके इन सभी का वर्णन करूंगा. हे प्रभु, आप इन अपराधों से बचने की शक्ति मुझे दीजिए.
The 10 offenses to the holy name are 1. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. 2. To consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. 3. To disobey the orders of the spiritual master. 4. To blaspheme the Vedic literature or literature in persons of the Vedic version. 5. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. 6. To give some interpretation to the holy name of the Lord. 7. To commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. 8. To consider the chanting of Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities, Karmakanda. 9. To instruct the faithless person about the glories of the holy name. 10. To not to have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after hearing so many instructions on this matter. Now I will diligently explain these offenses.
मैं इन सब अपराधों का वर्णन करूंगा. पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना. दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना. तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना. चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना. पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना. छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना. सातवा, नाम के बल पर पाप करना. आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना। नौवां श्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी न्यगात महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। मैं इन सब अपराधों का वर्णन करूंगा।
The Purana's author says that anyone who carelessly commits these offenses is a great fool. Anyone who, even though he knows the holy name's glory, remains attached to the things of eye and mind and does not worship the holy name, remains plunged in the world of birth and death.
Puran कहते हैं कि जो भी कोई असावधानी से इन अपराधों को करता है वो महान मूर्ख है। कोई भी हालांकि वो भगवान की महिमा के बारे में जानता हो वो फिर भी आसक्त रहता है मैं और मेरे से, और जो पवित्र नाम की आराधना नहीं करता वो इस जन्म और मृत्यु संसार में फंसा रहता है।
Now I will speak of the first offense, blasphemy of the devotees. Because of this offense, everything the soul possesses is destroyed.
मैं इन सभी अपराधों का वर्णन करूंगा। साधु की निंदा को प्रथम अपराध के रूप में जानता हूं। इस अपराध के फल स्वरूप जीव को हानि स्वीकार करनी पड़ती है।
Oh Lord, now I will describe the qualities of the devotees, qualities that you, in the form of Lord Krishna, described to Uddhava in the 11th canto of Srimad Bhagavatam.
हे प्रभु, मैं भक्तों के गुणों का वर्णन करूंगा जो आपने श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को वर्णित किए थे।
A devotee is merciful, tolerant, equal, free of hatred, truthful, pure at heart, engaged in acting for the welfare of others, not agitated by material desires, intelligent, self-controlled, not interested in collecting material possessions, gentle and pure, eats fragilely, is peaceful at heart, takes shelter only of Lord Krishna, is sober and grave, has defeated the six vices, and is prideless, respectful to others, expert, honest, and wise. I say that a true devotee has all these good qualities.
तो ये गुण इस प्रकार से हैं: कृपालु, सहिष्णु, समदर्शी, द्रोह शून्य, सत्यवादी, विशुद्ध आत्मा, दूसरों के हित में कार्यरत, भौतिक इच्छाओं से अविचलित, जितेंद्रिय, अकिंचन, बुद्धिमान, भौतिक संपत्ति के संग्रह में रुचिहीन, सुशील, पवित्र, मितभोजी, शांत, धैर्यवान, स्थिर, कृष्ण के शरणागत, प्रमाद रहित, सुगंभीर, षड्गुण विजयी, निर्अभिमान, दूसरों का सम्मान करने वाला, दक्ष, ईमानदार, ज्ञानी, ये सब लक्षण जिसमें हैं, वह साधु हैं।
O Lord, these qualities are of two kinds, Swarupa or natural and Tatastha, borderline. Now I will describe them.
हे प्रभु, ये सब लक्षण स्वरूप एवं तटस्थ के रूप में दो प्रकार के हैं। मैं इनका वर्णन करूंगा।
Taking shelter of to Lord Krishna is the only Swarupa quality.
कृष्ण की शरण ग्रहण करना ही केवल स्वरूप लक्षण है।
All others are considered tatastha.
अन्य सारे तटस्थ लक्षण हैं।
When by good fortune a person associates with devotees, becomes attracted to the holy name and chants the holy name, then he naturally takes shelter of Lord Krishna's feet.
यदि सौभाग्यवश किसी को साधु संघ की प्राप्ति होती है, फलस्वरूप उसकी भगवान नाम में रुचि हो जाती है।
That is the primary good quality. As he chants and chants the holy name, the other good qualities naturally come to him.
वह कृष्ण नाम का गान करता है और स्वाभाविक रूप से कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है।
All other good qualities are considered tatastha or secondary. they will also inevitably make their appearance in the body of a true Vaishnava.
कृष्ण की शरण ग्रहण करना ये स्वरूप लक्षण है. जैसे जैसे वह भगवान नाम का गान करता है उसमें अन्य सद्गुण स्वाभाविकता से आ जाते हैं. अन्य समस्त सद्गुण तटस्थ मौन हो जाते हैं. वे भी एक सच्चे वैष्णव की देह में निश्चित रूप से प्रकट होंगे.
So only the true desire to surrender to the Lord, this is the primary quality.
वो सच्ची इच्छा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होने की ये स्वरूप लक्षण है.
Through that quality, everything else, all the other good qualities appear in the devotee.
इस गुण से अन्य सभी गुण उस भक्त के में प्रकट हो जाते हैं.
If one pretends to be surrendered but actually is not, he cannot develop the good qualities.
अगर कोई दिखावा करता है कि वह शरणागत है परंतु वास्तव में शरणागत नहीं है तो वह अन्य जितने गुण हैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता.
So pretense will not help.
दिखावा करना इससे ये हमारी सहायता नहीं करेगा.
The surrender must be genuine.
वो शरणागति बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए.
So we have to work together as a community, helping each other, association, to develop these qualities and especially the one.
तो एक समाज के रूप में हम सबको एक दूसरे की यह सहायता करनी चाहिए कि हम एक ये संघ इस संघ में इन सभी गुणों को अपने जीवन में प्रकट कर सकें.
And Rupa Goswami in Uparishamrita, now he describes, right, a person has to control his senses to be able to elevate his consciousness further. Then he must avoid 6 activities to not to fall back. He must practice these activities to elevate his consciousness further. And there are 6 kind of exchanges which actually will bring you very much closer to Krishna.
Srila Rupa Goswami Upadeshamrit mein sabse pehle batate hain ki kaise indriyon ko sanyamit rakhna avashyak hai apni chetna ko upar uthane ke liye. Uske baad wo batate hain ki aise 6 prakar ke karya jisse hame bachna chahiye aur aise 6 prakar ke karya jisme lagna chahiye apni chetna ko aur upar uthane ke liye. फिर आगे वो भक्तों के बीच में 6 प्रकार के एक्सचेंजेस का वर्णन करते हैं, आदान प्रदान, जो हमें कृष्ण के बहुत ही समीप ले जाता है.
The most essential is that we avoid asadhu sangha, we look for sadhu sangha, and that we are practicing the exchanges with other devotees, and these are darati pratirihnati.
तो उसमें से जो सबसे गंभीर है वो है कि कहते जो असाधु हैं या दुर्संगति है उससे बचना, साधु की संगति करना और फिर वो 6 प्रकार के आदान प्रदान.
सो इफ दीज आर प्रैक्टिस्ड, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, ओपनिंग वन्स हार्ट एंड इंक्वायरिंग फ्रॉम अदर्स, and then giving prasad and accepting prasad from others. These are exchanges, loving exchanges among devotees, which very much elevate one's consciousness.
तो ददाति प्रतिगनाति, उपहार देना, उपहार को स्वीकार करना, गोयम आख्याचित प्रेक्षति, अपना हृदय confidentially, अपने हृदय की बातों का भक्तों से शेयर करना, उनका सुनना, और तीसरा भूंगते भोजते चाहे प्रसाद का वितरण करना और प्रसाद को स्वीकार करना.
सो ओके वी कंटिन्यू रीडिंग नाउ. सर्टन काइंड्स ऑफ क्लोथिंग मार्क दे वेरियस पोजिशन इन वर्णाश्रम. हाउएवर वन स्टेटस एज अ डिवोटी इज नॉट मार्क इन दैट वे.
विशेष प्रकार के वस्त्र वर्णाश्रम की विभिन्न स्थितियों को चिन्हित करते हैं, तथापि एक भक्त के रूप में व्यक्ति की स्थिति को उस प्रकार के चिन्हित नहीं किया जाता है.
Taking shelter of Lord Krishna is the mark of a devotee. From a devotee's mouth, comes the chanting of the Lord Krishna's holy name.
भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना भक्त का लक्षण है. भक्त के मुख से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का उच्चारण होता है.
गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एंड सन्यासी आर द फर्स्ट फोर डिविजन्स एंड शूद्र वैश्य क्षत्रिय एंड ब्राह्मण आर द सेकंड फोर डिविजन्स ऑफ वर्णाश्रम.
गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी वर्णाश्रम के प्रथम चार विभाग है तथा शूद्र वैश्य क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्णाश्रम के द्वितीय चार वर्ग है.
One is not known as a devotee by these divisions. A devotee is known because he takes shelter of Lord Krishna. This the scriptures say.
व्यक्ति को भक्त के रूप में इन वर्गों के द्वारा नहीं जाना जाता. वह भक्त इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है. ऐसा शास्त्र कहते हैं.
O Lord, you taught Raghunath Das how to be a household devotee.
हे भगवान, आपने रघुनाथ दास को सेवा का लक्ष्य करके सिखाया कि एक गृहस्थ भक्त को कैसे कार्य करना चाहिए.
यू सेड टू हिम बी पीसफुल गो होम डोंट बी ए मैडमैन ग्रेजुअली यू विल क्रॉस टू द फार्दर शोर ऑफ द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ.
आपने उनसे कहा धैर्य धरो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भव सागर को पार कर सकोगे.
टर्न अवे फ्रॉम मंकी रेनाउंसिएशन विदाउट अटैचमेंट except the material pleasures are appropriate.
तुम मरकट वैरागी दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो. अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो किंतु इसमें आसक्त मत होना.
In your heart keep spiritual faith. Externally act like an ordinary person. Lord Krishna will soon deliver you.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बनो किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसे व्यवहार करो. इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पाश से छुड़ा लेंगे.
Seeing that Raghunath Das has renounced grihastha life, you gave him this instruction wonderful to hear.
ये देखकर कि रघुनाथ दास ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, आपने उनको ऐसे उपदेश दिया जिसका श्रवण अद्भुत है.
Don't hear gossip, don't speak gossip, don't eat opulent foods, don't wear opulent clothing.
व्यर्थ की बातें मत सुनो, ग्राम्य कथा मत कहो, स्वादिष्ट भोजन का सेवन मत करो, भव्य वस्त्रों को धारण मत करो.
Don't desire that others will honor you. You give all honor to others. Always chant Lord Krishna's holy name. In your heart serve Shri Shri Radha Krishna in Braj.
स्वयं की मान की अपेक्षा ना रखते हुए सदैव दूसरों का सम्मान देते हुए सदैव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो. अपने हृदय में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा व्रज में करो.
So these instructions are given by Lord Chaitanya Mahaprabhu to Raghunath Das directly.
तो ये उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद स्वयं श्री रघुनाथ दास को स्वामी को दिए.
The primary quality is one that is honored everywhere. The differences that begin with Varnashrama are all secondary.
मुख्य लक्षण एक है, उसका सर्वत्र सम्मान होता है. वर्णाश्रम से उत्पन्न होने वाले समस्त भेद गौण हैं.
If I see that a person who has completely taken shelter of Lord Krishna acts badly, I still say he is a saintly devotee. Such a person should be served by everyone.
यदि मैं देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति दुराचार करता है, फिर भी मैं कहता हूं वह एक भक्त अर्थात साधु है.
Lord Krishna says this in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Therefore, I will always earnestly worship such a devotee.
भगवत गीता तथा श्रीमद भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा है, इसलिए मैं सदैव ऐसे भक्त की गंभीरता पूर्वक दृढ़ निश्चय एवं निष्ठा सहित आराधना करूंगा.
Which devotee?
कौन सा भक्त?
As described here, a devotee who has completely taken shelter of the Lord's lotus feet, but he made a mistake.
ऐसा भक्त जिसने पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है परंतु फिर भी उससे कोई गलती हो गई है.
O Lord, you mercifully gave this one confidential teaching. I have no power to find the end of your mercy.
हे भगवान आपने कृपा वर्ष गूढ़ सिद्धांत के रूप में मुझे ये गुह्य शिक्षा प्रदान की है. आपकी कृपा का अंत खोजने की मुझ में जरा भी शक्ति नहीं है.
When a person attracted to the holy name, once says the holy name, his previous sins are destroyed.
पवित्र भगवान नाम के प्रति आकृष्ट व्यक्ति जब एक बार पवित्र नाम लेता है तब उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं.
The scent of his previous sins may still linger for some days, but by the power of the holy name, they too are gradually destroyed.
उसके पूर्व पापों की गंध तब भी कुछ दिनों के लिए रह सकती है किंतु पवित्र नाम के प्रभाव से वह भी धीरे धीरे विनष्ट हो जाती है.
The scent of sin is quickly thrown away. Then that person becomes known as a great saint.
पाप की गंध शीघ्र ही दूर हो जाती है और वह व्यक्ति एक महान साधु या परम धर्मात्मा के रूप में विख्यात हो जाता है.
During those days, when the scent of sin is not yet destroyed, to ordinary eyes, he may still seem to be a sinner.
जब तक पाप की गंध नष्ट नहीं हो जाती है तब तक वह व्यक्ति सामान्य लोगों की दृष्टि में अभी भी एक पापी व्यक्ति प्रतीत हो सकता है.
Seeing that scent of sin, someone may criticize the devotee. Seeing that he had previously sinned, someone may criticize his character.
पाप की उस गंध को देखकर यदि कोई उस भक्त की निंदा करता है, पूर्व पाप कर्म को देखकर वह व्यक्ति अवज्ञापूर्ण आचरण ही करता है.
That critic is an offender. Because he blasphemed the devotee, he commits an offense to the holy name. Because Krishna is angry with him, he falls down. He means the one who criticized the devotee, not the devotee who may have made the mistake.
वैष्णव निंदा करने वाला एक पाखंडी एक अपराधी है. चूंकि उसने एक भक्त की निंदा की है इसलिए कृष्ण उस पर क्रोधित है और निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है. किसका पतन होता है? जो भक्त निंदा कर रहा है उसका नहीं जिसने गलती की है.
So, we have to be very, very careful how we deal with devotees.
तो हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए कि कैसे हम भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं.
We may see some activities which we consider not good.
हम कुछ ऐसे चीजें देख सकते हैं उस भक्त को करते हुए जो हमें हमें पसंद नहीं है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते.
And we may feel that we are right to make a comment, to criticize.
और हमें लग सकता है कि हम सही हैं कुछ ना कुछ कमेंट पास करने के लिए या निंदा करने के लिए.
We have to be very careful about that.
हमें इस चीज के प्रति बहुत ही सावधान होना चाहिए.
Example, we can see on Vamshiraj Babaji.
उदाहरण के लिए हम वंशीदास बाबा जी के जीवन में देखते हैं.
श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ही फॉरबेड हिज डिसिपल्स टू सी वंशीदास बाबा जी.
श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को वंशीदास बाबा जी के निकट जाने से रोका.
व्हाई? आई मीन ही वाज अ प्योर डिवोटी.
ऐसा क्यों? वो तो शुद्ध भक्त थे.
बट it's not because any of his fault. It was because those who would see him dealing with the Lord would think that he is offensive.
वो ऐसा वंशीदास बाबा जी में महाराज में कोई भी ऐसा गलती नहीं थी. उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि उनके शिष्य जब उनको भगवान के साथ उनके व्यवहार को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो अपराध कर रहे हैं.
For example, once, he had the Gornitai, and now he was worshipping Gornitai, and then once the offering bowl disappeared.
तो उदाहरण के लिए जैसे उनके जो विग्रह हैं गौरनिताय थे और वंशीदास बाबा जी महाराज उनकी सेवा करते थे तो एक बार वो जो कटोरे थे जिसमें वो भोग लगाते थे वो गायब हो गए, दृश्य हो गए.
So and then his comment to that was, well, you're supposed to be the supreme lord. How can you have somebody stealing your bowl? Then I will not cook for you.
तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने भगवान को कहा कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके चलते चोर इस कटोरे को कैसे ले गए, मैं आपके लिए भोग नहीं बनाऊंगा.
And later on, Nitai's bowl appears. He says, okay, I'll cook for Nitai. And then you go and find your bowl.
तो उन्होंने देखा कि जो नित्यानंद प्रभु है उनका कटोरा सामने प्रकट हो गया है. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं निताई के लिए भोग बनाऊंगा, आप अपना बंदोबस्त खुद कीजिए.
So that was his rasa. And no, he was so intimate with the Lord that because he was on such pure level.
तो ये उनका रसा था, वो भगवान से इतने घुए ढंग से व्यवहार करते थे.
If somebody would see, hey, what are you doing? Running offenses, criticizing. Look at him.
और कोई उनको देखे ऐसा व्यवहार करते हुए, वो क्या कहेगा? अरे अरे, आप तो भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं.
Now, who is the one who makes offenses?
तो कौन वास्तव में अपराध कर रहा है?
So we have to be very careful.
तो हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए.
Sometimes we may see somebody does something wrong.
कभी कभार हम देखते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है.
Before we go on to internet and start writing emails, I saw this and this is no outrageous, how it can be like this, he is a nonsense. Then before that, maybe we should get to know actually what happened, why did it happen, consult some senior Vaishnavas and ask about what should we actually think about it.
तो जब आप कोई ऐसे चीज देखते हैं इंटरनेट पे जाने से पहले, उसको पोस्ट करने से पहले कि मैंने ऐसा देखा, उसने ऐसा गलत, वो ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, ये सब करने से पहले आपको सच्चाई पता कर लेनी चाहिए कि उस भक्त ने ऐसा क्या किया, क्यों किया, और किसी वरिष्ठ भक्त को कंसल्ट करना चाहिए.
Because once you commit offense, then it's very, very difficult to contract it.
क्योंकि अगर आपने एक बार अपराध किया तो उसको उसका निवारण करना बहुत ही मुश्किल है.
We don't have really time, but there is also no solution. How can you actually somehow try to contract or to fix if you commit Vaishnava Aparadh?
तो अभी समय नहीं है, परंतु इस पुस्तक में इसका हल भी दिया हुआ है कि अगर आपसे अगर वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसका क्या समाधान है.
Now, I can mention in summary,
तो मैं संक्षिप्त रूप में बता सकता हूं.
If a devotee commits Vaishnava Aparadh, then he should go to the devotee and first of all apologize, try to pacify the devotee.
अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो सबसे पहले उसको उस वैष्णव के पास जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए और उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए.
Now the devotee now who got offended, then he may forgive, but he may not. Maybe he's so angry that he cannot.
तो जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो भक्त जिसके प्रति अपराध हुआ है वो आपको क्षमा कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना क्रोधित है कि वो आपको क्षमा ना करे.
So then the critic will say, well, devotee should be merciful, you are not. Therefore you are not a devotee and I didn't commit any aparadh. That's a nonsense.
तो अगर वो क्षमा नहीं करता तो ये जो भक्त इसने अपराध किया वो कहे कि भक्तों को तो बहुत ही कृपालु होना चाहिए और आप कृपा नहीं दिखा रहे, तो यानी आप भक्त नहीं है, और आप भक्त नहीं है तो मैंने कोई वैष्णव अपराध भी नहीं किया है.
इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट.
तो ये उनका दोष नहीं है, ये आपके दोष है.
ही हैज राइट टू नॉट टू फॉरगिव यू इफ ही डजंट वांट टू.
तो उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको क्षमा ना करे, वो उसकी इच्छा है.
सो इफ दैट हैपन्स, वन शुड try to find some way how to serve the devotee such a way so then he gets pleased and he forgives you the offense.
तो अगर ऐसा होता है कि वो क्षमा नहीं कर रहे तो आपको कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे आप उन भक्त की सेवा करें और वास्तव में वो संतुष्ट हो और फिर वो आपको क्षमा कर सके.
Now if even that doesn't work, it's not possible, then the only way how it can be done is to take full shelter of the chanting of the holy name.
और अगर ऐसा करने पर भी कुछ बात नहीं बन रही तो एकमात्र जो तरीका है वो है भगवान के पवित्र नामों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण करना
एंड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा फॉर हाउ फूलिश यू वर
और भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करना कि कितने मूर्खता पूर्वक आपने ऐसा कार्य किया है.
Now one may think, well, okay, I commit the aparad and then okay, I'll just start chanting and it will be everything okay.
तो कोई हो सकता है सोचे कि मैं अपराध करूंगा और फिर जप करूंगा और उससे हर चीज ठीक ठाक ठीक हो जाएगी.
Then you are even greater fool.
तो आप और भी महान मूर्ख हैं.
It will not be better. You by committing such an aparad, then you will actually get more into the mess.
तो ऐसा करने से चीजें बेहतर नहीं होंगी. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जंजाल में और फंस जाएंगे.
Only if after trying everything possible didn't work, then you take shelter of the holy name. But of course the best is don't commit Vaishnava aparad.
तो सारे के सारे प्रयास पूर्ण रूपेण प्रयास करने के बाद भी अगर बात नहीं बनी तब भगवान के पवित्र नामों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और निश्चित रूप से सबसे अच्छा यह है कि आप अपराध ना करें.
एंड इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू यू मे नो अनइंटेंशनली कमिट सम वैष्णव अपराध एंड मे बी नोबडी सॉ राइट एंड मे बी द डिवोटी डजंट नो स्टिल कृष्णा नोज. Don't try to hide it. Do something about it.
तो आपकी आपसे जाने अनजाने में भी अपराध हो गया किसी ने देखा नहीं और हो सकता है उस भक्त को भी पता नहीं चला किसने मेरे प्रति अपराध किया है परंतु कृष्ण जानते हैं तो अपने अपराधों को छुपाने का प्रयास मत कीजिए.
And if you don't know what to do, then गोहिया माकेति पृच्छते.
और अगर आपको नहीं पता क्या करना चाहिए तो गुह्यम आख्याति प्रयच्छति.
Consult some senior Vaishnavas and reveal to them confidentially. Just okay, I made a mistake. I don't know what to do. Please, can you give me some solution? What can I do?
तो वरिष्ठ भक्तों के पास जाइए उनको कंसल्ट कीजिए उन्हें बताइए कि मेरे से ऐसे ऐसा अपराध हुआ है इसका क्या समाधान है मुझे क्या करना चाहिए.
सो इफ वी डू दैट वी विल फाइंड अ वे हाउ टू कंटराक्ट इवन द वर्स ऑफ द नाम अपराध.
तो अगर हम इस प्रकार से हम नाम अपराध से ऊपर उठ सकते हैं उसका समाधान निकाल सकते हैं.
हरे कृष्ण. ओके Alright, then we have few more minutes left for some questions.
आपके से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं.
Seems that these verses are describing proper Vaishnava. These verses are describing proper Vaishnava behavior in very, you could say, strong language.
तो ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है वैष्णव अपराध के बारे में बहुत ही खतरनाक रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है.
Yes, they do.
So it seems more or less that there are discussion, this discussion going on here with Haridas Thakur. There are real devotees, neophytes and pseudo devotees. It seems more or less three categories here.
Yes.
तो जो यहाँ पर वर्णन किया गया है श्री हरिदास ठाकुर जो वास्तविक में भक्त हैं और ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल कनिष्ठ भक्त हैं दिखावटी भक्त हैं तो क्या ऐसे तीन अलग अलग श्रेणी हैं.
So how does one tread the line? How does one walk the line between these? I mean, we know we're not on that level of these ideal qualities. We know that.
हम जानते हैं कि हम जो बिल्कुल ऐसे परम भक्त हैं ये सारे गुण हमारे अंदर नहीं हैं तो कैसे हम ये अंतर कर सकते हैं.
How do we make these distinctions then between
you could say neophyte devotees, or a little better than neophyte also, but also, and then those that are actually pseudo devotees, this becomes a real problem in our, because we are associating sometimes with pseudo devotees also. So how do we deal with this?
तो हम कैसे ये अंतर पता लगा सकते हैं और कैसे इस चीज से डील कर सकते हैं? कई भक्त कनिष्ठ होते हैं, कई थोड़े से बेहतर होते हैं और कई बहुत ही झूठे शूडो डिवोटीज भक्त भी होते हैं.
So we have to always be in association of devotees, sadhu sangha, to be able to understand.
तो सबसे पहले हमें हमेशा साधु संघ में होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए.
If we don't know what to do, then again, you know, consulting senior Vaishnavas and inquiring from them.
अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए तो समाधान वही है, आप वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करें और उनकी राय लें कि क्या करना चाहिए.
There are qualities which we have to always and we have to respect. We have to learn to respect people, right? So if somebody comes to the temple even as a guest, he may be a Kanishtha devotee.
तो हमें दूसरों को सम्मान देना, जन साधारण को भी सम्मान देना, इसको सीखना चाहिए. मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर आता है अतिथि के रूप में, हो सकता है वो कनिष्ठ स्तर पर हो.
So we respect them. We respect them by, you know, taking them to the temple, showing darshan, giving some prasad.
तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनको मंदिर का स्वागत करते हैं, प्रसाद देते हैं, दर्शन कराने के लिए लाते हैं.
But we have to learn to discriminate. Like you said, okay, no, Kanishta, Madhyama, Uttama.
पर साथ ही साथ हमें ये भेदभाव करना भी सीखना चाहिए, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम.
So we have to learn to be able to associate with others.
तो अन्य भक्तों से किस प्रकार संग करना है, इसको हमें सीखना चाहिए.
There are two kinds of association.
दो प्रकार के संग हैं.
There is
Is requesting you can speak in the mic. No.
There is a taking association, a giving association.
Sang lena or sang dena.
So then, when we see somebody on more, say the Kanishtha platform, then if we are on the higher platform, we should be very kind to them and give our association to them.
अगर हम किसी भक्त को देखते हैं वो कनिष्ठ स्तर पर है और हम उससे ऊपर हैं, तो हमें उन पर बहुत कृपालु होना चाहिए और अपनी संग उनको प्रदान करनी चाहिए.
And no, such people can be very materialistic people. So we are very careful not to take their association.
तो हमें ये सावधान होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का संग लेना.
Then when we see persons who are more elevated than we are, then we are eager to take their association.
तो जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं जो हमसे ज्यादा उन्नत हैं, तब हम बहुत ही उत्साह होना चाहिए ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए.
That way, then we can learn how to respect everyone.
उस प्रकार से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे सभी का सम्मान करना है.
The challenge is that sometimes a Kanistha adhikari may be externally in a superior position, then it becomes challenging.
Sorry, Maharaj, I could not hear.
The Kanistha bhag externally may be in a senior position, then it becomes a challenge.
Yeah? That, you want to say the Hindi?
There's some balance of respectful etiquette and also trying to harmonize the situation, but also not be blind.
महाराज कह रहे हैं कभी कभार एक कनिष्ठ भक्त बाह्य रूप से सीनियर पोजीशन पे होता है, तब ये एक चुनौती बन जाता है सभी को सम्मान देना.
रेस्पेक्ट इज गिवन ऑन मेनी लेवल्स एट द सेम टाइम. सो लाइक कृष्णा व्हेन ही कम्स टू द असेंबली, राइट, ही इज द यंगेस्ट, सो एवरीबॉडी पेज रेस्पेक्ट टू हिम. नाउ नो सम then they think I'm senior, so they don't have to pay respect, but this is wrong. Daksha and Lord Shiva comes, okay, then he is the most senior, understood by everyone. Then when Lord Brahma enters, then Lord Shiva actually, you know, is more respected than Lord Brahma. But Daksha didn't understand it. So it's mistakes can happen. Therefore, for us to avoid mistakes, we should always see, you know, consult the, you know, senior most person, the devotees, and follow in their footsteps.
तो जो सम्मान है वो अलग अलग स्तरों पर एक साथ दिया जा सकता है. उदाहरण के लिए जैसे दक्ष और शिव का जो लीला है श्रीमद् भागवतम में, तो भगवान शिव आते हैं उस सभा में तो सभी भक्त उनको सबसे वरिष्ठ समझते हैं. यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी भी उपस्थित होते हैं तो वो शिव का सम्मान करते हैं, परंतु इस बात को दक्ष नहीं समझ पाते. तो गलती हर एक से हो सकती है. तो अगर हम गलतियों को से बचना चाहते हैं तो उसका समाधान यही है कि हम वरिष्ठ भक्तों के संग में रहें और उनसे गाइडेंस लें.
So again the assembly when Krishna comes, even Bhishma Dev, he is offering his respects. So then, you know, okay, if he does, we should all do. But Shishupal, he is so foolish. He says, oh, what is this?
जब भगवान कृष्ण सभा में आते हैं, सकते देखने में सबसे छोटे हों, परंतु पूरा की पूरी सभा उनको सम्मान देती है. यहाँ तक कि जब कृष्ण आए तो भीष्म देव ने भी उनका सम्मान किया. तो अगर भीष्म देव महाजन उनका सम्मान कर रहे हैं तो मुझे भी उनका सम्मान करना चाहिए.
And then Shishupal is finished.
परंतु शिशुपाल ने ऐसा नहीं किया तो उसका क्या हर्ष हुआ, उसका वध हो गया.
So that means and also like not following Guru Sadhu Shastra and their footsteps.
तो गुरु साधु शास्त्र उनके चरण.
Sometimes it is difficult. Like say for example when Arjuna catches Ashwatthama and then Ashwatthama who kills the children of Pandavas. And then Bhima says kill him. Draupadi says don't kill him. Now he has him there, and then if he cuts his head off, then Draupadi will be unhappy. If he lets him go, Bhima will be unhappy. What should he do? It's difficult, difficult decision.
तो कभी कभार ये बहुत कठिन हो सकता है. उदाहरण के लिए जैसे अश्वत्थामा जिन्होंने पांडव के पुत्रों की हत्या कर दी थी, तो जब अर्जुन उनको पकड़ के लाए, भीम अर्जुन को कह रहे हैं इसका वध कर दो, परंतु द्रौपदी कह रही है इनको क्षमा कर दो. तो अगर वो उसका वध कर दें तो द्रौपदी के प्रति वो असम्मान होगा, और अगर छोड़ दें तो भीम के प्रति असम्मान होगा. तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए?
But Arjuna, then he was very intelligent, he knew what to do.
परंतु अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान है, वो जानते थे उन्हें क्या करना चाहिए.
He cut his hair off, cut the jewel off his forehead, and that's like killing him, but he was alive.
तो उन्होंने उनके केश काट दिए, उनके जो इतना आभूषण थे उसको हटा दिया. तो उसी प्रकार से है, एक व्यक्ति को मारने के समान, एक क्षत्रिय को.
So we have to be very conscious of Guru, Sadhu and Shastra and follow then what needs to be done. And if we don't know, then we have to consult Guru, Sadhu or Shastra.
तो हमें बहुत ही चेतनापूर्वक होना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के प्रति. अगर हमें नहीं पता क्या करना है तो गुरु साधु और शास्त्र से मार्गदर्शन लें.
And if we make a mistake and we figure out that later we made a mistake, then we should be very, in a mood of regretting what we had done and try to find how we can counteract what we had done.
तो अगर हम कोई गलती कर देते हैं, हमें बाद में पता चला कि हमसे ऐसी गलती हुई, तो एक पछतावे के भाव में हमें जाकर उसको ठीक करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए.
जय श्री प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रमानंद.
Then answer that book.